लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत हैं आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने 1 जून को वृद्धावस्था के महत्व पर अपनी धर्म शिक्षा माला जारी रखते हुए याद दिलाया कि बुजुर्ग हमें प्रार्थना में दृढ़ता और आशा के साथ अपने आप को प्रभु को समर्पित करने की प्रेरणा देते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों एवं तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
La bella preghiera dell'anziano che troviamo nel Salmo 71.
बुजुर्ग व्यक्ति की सुंदर प्रार्थना जिसको हम स्तोत्र 71 में पाते हैं, हमें गहरे तनाव के बारे चिंतन करने हेतु प्रोत्साहित करता है, जो बुढ़ापे की स्थिति में आता है, जब परिश्रम करने की याद चली जाती और प्राप्त कृपाओं पर विश्वास एवं आशा की परीक्षाएं आ जाती हैं। परीक्षा पहले से ही खुद को कमजोरी के साथ प्रस्तुत करती है, जो वृद्धावस्था के दुर्बल एवं असहाय स्थिति तक पहुंच जाती है। स्तोत्रकार जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, प्रभु को संबोधित करता है, सच्चाई को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि यह प्रक्रिया परित्याग, धोखे, पूर्ववर्ती और अहंकार के लिए अवसर बन जाती है। कई बार बुजुर्ग इसके शिकार बनते हैं। यह एक प्रकार की कायरता है जिसमें हम अपने समाज में माहिर हैं। यह सच है कि फेंकने की संस्कृति में बुजुर्गों को एक किनारे रखा जाता है और वे इन सब का सामना करते हैं। निश्चय ही उन लोगों की कमी नहीं है जो बुजुर्गों का फायदा उठाते हैं, उन्हें धोखा देते और उन्हें कई तरीकों से डराते हैं। हम अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ते हैं या बुजुर्गों के बारे समाचारों में सुनते हैं जो अपनी बचत के लिए बेईमानी से छल किए जाते अथवा बिना सुरक्षा एवं देखभाल के छोड़ दिए जाते हैं या अपने अधिकारों को त्यागने के लिए मजबूर किए जाते हैं। संत पापा ने कहा, यह गंभीर बात है, किंतु ऐसे क्रूरता परिवारों में भी होता है। बुजुर्गों को घर से निकाल दिया जाता, उन्हें वृद्धाश्रमों में छोड़ दिया जाता है, जहां उनके बच्चे कभी कभार या साल में 1 या 2 बार जाते हैं। उन्हें कोने में रख दिया जाता है। संत पापा ने कहा, ऐसा आज भी परिवारों में हो रहा है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने समाज का आह्वान करते हुए कहा, समाज को अपने बुजुर्गों की देखभाल हेतु आगे आना चाहिए, जिनकी संख्या बहुत अधिक है और जिनमें से अधिकांश परित्यक्त हैं। जब हम ऐसे बुजुर्गों के बारे सुनते हैं जो अपनी स्वच्छता, सुरक्षा, अपने घर आदि से बेदखल हो गए हैं, तब हम समझते हैं कि बुढ़ापे के संबंध में आज के समाज की महत्वाकांक्षा सामयिक आपात स्थितियों की समस्या नहीं है, बल्कि कचरे की संस्कृति की विफलता है, जो दुनिया जहां हम रहते हैं उससे विषक्त कर रही है। स्तोत्र ग्रंथ का वृद्ध व्यक्ति ईश्वर के प्रति अपनी निराशा को गुप्त रूप से प्रकट करता है। मेरे शत्रु मेरी निंदा करते हैं, जो मेरी घात में बैठे हैं वे आपस में परामर्श करते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर ने उसे त्याग दिया है, उसका पीछा करो और उसे पकड़ लो, क्योंकि उसे कोई नहीं छुड़ाएगा। संत पापा ने कहा, परिणाम घातक है। वृद्धावस्था न केवल प्रतिष्ठा खो देती है, बल्कि संदेह भी करने लगती है कि वह इसके योग्य है अथवा नहीं। इस तरह हम सभी अपनी दुर्बलता, अपनी बीमारी, अपनी उम्र और वरिष्ठता को छिपाते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रतिष्ठा को खोने के कारण बनेंगे। हम अपने आप से पूछें, क्या यह मानवीय है कि इस भावना से प्रेरणा ली जाए?
Come mai la civiltà moderna così progredita, efficiente e così a disagio nei confronti della malattia e della vecchiaia?
यह कैसी मजबूरी है कि आधुनिक सभ्यता इतनी उन्नत और कुशल होकर भी बीमारी और बुढ़ापे से बहुत अधिक असहज है? यह बीमारी और बुढ़ापे को छिपाती है? और यह किस प्रकार की विडम्बना है कि राजनीति, जो प्रतिष्ठित जीवन की सीमाओं को परिभाषित करने हेतु प्रतिबद्ध है, बुजुर्ग और बीमारों के साथ प्रेमपूर्ण अस्तित्व की गरिमा के प्रति असंवेदनशील है? स्तोत्र ग्रंथ का बुजुर्ग, जिसको हमने सुना है, इस उम्र को एक पराजय के रूप में देखता है एवं ईश्वर पर भरोसा को पुनः जागृत करता वह महसूस करता है कि उसे सुना जाए, वह ईश्वर की ओर लौटता है। इस स्तोत्र पर टिप्पणी करते हुए संत अगस्तीन बुजुर्गों का आह्वान करते हुए कहते हैं, डरो मत कि तुम भी वृद्धावस्था में उसी दुर्बलता में पड़ जाओगे। क्यों डरते हो कि वे तुम्हें त्याग देंगे, तुम्हें बुढ़ापे की अवस्था में फेंक देंगे जब तुम्हारी शक्तियाँ असमर्थ हो जाएंगी? स्तोत्रकार इस प्रकार प्रार्थना करता है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, मेरी सुन और मुझे बचा, तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का सुदृढ़ गढ़ बन जा। यह पुकार ईश्वर के प्रति निष्ठा का परिचय देता है और उसकी क्षमता को बतलाता है कि वह चेतना जगाता जो नैतिक जीवन की असंवेदनशीलता से भटक गया है, जिसकी पूरी तरह से रक्षा की जानी चाहिए। वे पुनः प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझसे दूर ना जा, मेरे ईश्वर शीघ्र ही मेरी सहायता कर, जो मेरे प्राणों के घातक हैं वे लज्जित होकर पीछे हटें, जो मेरी दुर्गति चाहते हैं वे तिरस्कृत एवं कलंकित हों। संत पापा ने कहा,
In effetti, la vergogna dovrebbe cadere su coloro che approfittano della debolezza della malattia.
निश्चय ही उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो बीमारी और वृद्धावस्था की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। प्रार्थना बुजुर्गों के हृदय में ईश्वर की निष्ठा एवं उनके आशीर्वाद की प्रतिज्ञा को नवीकृत करता है। बुजुर्ग व्यक्ति में प्रार्थना करने की चाह उत्पन्न होती और वह उसकी शक्ति का साक्ष्य देता है। सुसमाचार में येसु उन लोगों की प्रार्थना को कभी नहीं ठुकराते जो आवश्यकता में होते हैं। बुजुर्ग अपनी दुर्बलता में जीवन की दूसरी अवस्था के लोगों को सीख दे सकते हैं कि हम सभी को अपने आप को प्रभु पर छोड़ देना चाहिए, उनसे मदद मांगनी चाहिए। इस अर्थ में हम सभी को बुजुर्गों से सीखना चाहिए। जी हाँ, बुजुर्ग होना एक वरदान है जहाँ हम अपने आप को दूसरों को देखभाल में छोड़ देते हैं, जिसकी शुरुआत खुद ईश्वर से होती है। दुर्बलता के लिए पोप की धर्म शिक्षा है कि उसे नहीं छिपाया जाना चाहिए। यह सच है और इसमें वास्तविकता है। धर्म शिक्षा जिसमें बुजुर्ग अवस्था हमें मानव जीवन की पूरी अवधि के लिए एक विश्वसनीय तरीके की याद दिलाती है। बुजुर्ग अवस्था को ना छिपाएं, बुढ़ापे की कमजोरी को ना छिपाएं, यह हम सभी के लिए एक सीख है। यह सीख हमारी अपनी सभ्यता के सुधार के लिए एक निर्णायक क्षितिज को खोलती है। बुजुर्गों को वैचारिक एवं व्यवहारिक दोनों रूपों में हाशिए पर रखना न केवल बुढ़ापे को बल्कि जीवन के हर आयाम को भ्रष्ट करता है। आज हम परिवार के बुजुर्गों के बारे सोचें, मैं उनके साथ कैसा संबंध रखता हूँ? क्या मैं उन्हें याद करता, उनसे मुलाकात करने जाता हूँ? क्या उनके लिए ऐसा सुनिश्चित करता कि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो? क्या मैं उनका आदर करता हूँ? बुजुर्ग जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरी माँ, पिताजी, दादा दादी, चाचा चाची, मित्र, क्या मैंने उन्हें अपने जीवन से दूर कर दिया है? अथवा क्या मैं उनके पास जाता हूँ ताकि विवेक पा सकूँ, जीवन की प्रज्ञा सीख सकूँ? याद रखें, आप भी बूढ़े होंगे, वृद्धावस्था हर व्यक्ति के लिए आती है। संत पापा ने कहा,
E come tu vorresti essere trattato, trattata nel momento della vecchiaia, tratta tu gli anziani oggi.
बुजुर्गों से वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप वृद्धावस्था में व्यवहार किया जाना चाहते हैं। वे परिवार की स्मृति हैं, मानवता की यादगारें, देश की यादगारें। बुजुर्गों की रक्षा करें, उनमें प्रज्ञा है। प्रभु बुजुर्गों को इस आह्वान और प्रेरणा की उदारता प्रदान करे जो कलीसिया के हिस्से हैं। प्रभु पर यह भरोसा हम सभी में हो और यह सभी के लिए हो, उनके और हमारे एवं हमारे बच्चों के लिए भी। इतना कहने के बाद संत पापा ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की तथा हे हमारे पिता प्रार्थना का पाठ किया।
Thank you.
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। युवा लोगों के साथ वर्तमान संकट को जीना और उनके साथ इसे दूर करना सीखना एक महान सच्चाई है और हम इसके वाहक हैं। इसका साक्ष्य देना और संचार करना हमारा कर्तव्य है। यह वह चेतावनी है जिसे संत पापा फ्रांसिस ने बुधवारीय आमदर्शन समारोह से पहले वैश्विक शैक्षिक संधि पर एक सम्मेलन के प्रतिभागियों से कहा। इस परियोजना को उन्होंने 2019 में लॉन्च किया था। संत पापा ने कहा कि संकटों को प्रबंधित किया जाना चाहिए और हमें संकटों को संघर्ष में बदलने से रोकना चाहिए। संकट आपको फेंक देते हैं, आपको बड़ा बना देते हैं या संघर्ष आपको दबा देता है। यह एक विकल्प है, बिना समाधान के एक विकल्प। युवाओं को संकट का सामना करने के लिए शिक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए संकट एक उपयुक्त क्षण होना चाहिए जो हमें नए रास्ते के लिए प्रेरित करे। वर्तमान समय में तकनीकी और उपभोक्तावाद हमें उपयोगकर्ता और उपभोक्ता बनाते हैं। संकट एक बार फिर मनुष्य जीवन और दुनिया के अर्थ को प्रचारित करने का एक अनुकूल क्षण बन सकता है। प्राणी के रूप में व्यक्ति की केंद्रीयता को पुनः प्राप्त किया जा सकता है जिसे ईश्वर ने अपने सदृश और अपने प्रतिरूप बनाया। संत पापा ने विभिन्न पक्षों और विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर गहन अध्ययन के माध्यम से वैश्विक शैक्षिक संधि पर ध्यान देने की सराहना की, जैसे कि व्यक्ति की गरिमा और मानवाधिकार, बंधुत्व और सहयोग, प्रौद्योगिकी और अभिन्न पारिस्थितिकी, शांति और नागरिकता, संस्कृतियों और धर्मों पर अध्ययन। संत पापा ने परियोजना को आगे बढ़ाने का आग्रह किया और संकट से निपटने के लिए एक प्रतीकात्मक मॉडल को प्रस्तुत किया। एनिस की पौराणिक आकृति जो ट्राय के जलते शहर से भागता है, अपने बुजुर्ग पिता अंकिस को अपने कंधों पर लेता है और अपने युवा बेटे को हाथ पकड़कर आगे ले जाता है। उसने दोनों को बचाया, यानी वह खुद को अकेले नहीं बल्कि उस पिता को बचाता है जो उसकी कहानी का प्रतिनिधित्व करता है और बेटे को जो उसका भविष्य है। संत पापा ने कहा कि शिक्षक अतीत की रक्षा करने और युवाओं के साथ साथ चलने के लिए बुलाए गए हैं। और संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अंत में यूक्रेन से अनाज के निर्यात की नाकाबंदी पर अपनी चिंता व्यक्त की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यूक्रेन के बंदरगाहों में चल रहे युद्ध के कारण रुके हुए गेहूं के मुद्दे पर समाधान निकालने की अपील की। संत पापा ने कहा, यूक्रेन से अनाज के निर्यात की नाकाबंदी बड़ी चिंता का विषय है जिस पर लाखों लोगों खासकर सबसे गरीब देशों का जीवन निर्भर है। मैं दिल से अपील करता हूँ कि इस मुद्दे को हल करने और भोजन के सार्वभौमिक मानव अधिकार की गारंटी के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। कृपया युद्ध के हथियार के रूप में मुख्य भोजन गेहूं का प्रयोग न करें। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि वैश्विक खाद्य संकट मंडरा रहा है। पश्चिमी देशों के नेताओं द्वारा यूक्रेन के बंदरगाहों को अवरुद्ध करके दुनिया को फिरौती देने के लिए रूस को दोषी ठहराए जाने के बावजूद यह यूक्रेन के अनाज निर्यात को खोलने के लिए एक सौदा करने की कोशिश कर रहा है। अनाज, खाना पकाने का तेल, उर्वरक और ईंधन की कीमतें युद्ध जारी रहने के कारण बढ़ गई हैं और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। संकट को टालने में मदद करने के लिए यूक्रेन सड़क, नदी और रेल द्वारा अनाज के अपने विशाल भंडार का निर्यात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कृषि अधिकारियों ने ध्यान दिलाया कि जब तक रूस यूक्रेन के काला सागर बंदरगाहों की नाकाबंदी को नहीं हटा देता, तब तक उसके लक्ष्य तक पहुँचने का कोई मौका नहीं है। प्रति वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। यह वैश्विक अभियान का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य हमारे स्वास्थ्य पर तंबाकू के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। संत पापा फ्रांसिस ने अभियान में अपनी आवाज शामिल करते हुए कहा, जीवन की संस्कृति एक विरासत है जिसे हम ख्रिस्तियों को सभी के साथ साझा करना चाहिए। उनके शब्द अर्जेंटीना के धर्माध्यक्ष एरियल एडगार्डो मोस्कोनी को संबोधित एक संक्षिप्त संदेश में आए, जो पिछले 25 मई को पोंटिफिकल यूनिवर्सिटी होली क्रॉस में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रमोटरों में से एक थे। संत पापा ने संदेश में कहा, प्रत्येक मानव जीवन अद्वितीय, अपरिवर्तनीय और अमूल्य है। यह हमेशा शब्दों और कार्यों के साहस के साथ नए सिरे से घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस मुद्दे पर चिंतन कई लोगों को यह जागरूक करने में मदद करेगा कि शारीरिक स्वास्थ्य ईश्वर का एक उपहार है, इसे ईश्वर ने हमें दिया है और हमें पूरी जिम्मेदारी से इसका ख्याल रखना चाहिए। संत पापा ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण 2018 की शुरुआत में वाटिकन के अंदर सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। उधर अगले महीने रोम में होने वाली परिवारों की विश्व बैठक के विवरण की घोषणा करने के लिए मंगलवार को वाटिकन प्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। एक महीने से कम समय में रोम शहर परिवारों की विश्व बैठक की मेजबानी करेगा। परिवारों की विश्व बैठक 22 से 26 जून तक होगी। ब्रीफिंग में भाग लेने वाले लोकधर्मी परिवार जीवन के लिए बने विभाग के उप सचिव प्रोफेसर गब्रिएला गम्बेनो थे। एकत्रित पत्रकारों से बातें करते हुए उन्होंने कहा, बैठक का विषय है पारिवारिक प्रेम, बुलाहट और पवित्रता का मार्ग। बुधवार 22 जून को संत पापा फ्रांसिस की उपस्थिति में बैठक की शुरुआत होगी। गुरुवार 23 से शनिवार 24 जून तक प्रेरिती कांग्रेस संत पापा पॉल सस्टम सभागार में होगी। शनिवार की दोपहर को संत पापा की अध्यक्षता में संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में पवित्र मिसा समारोह होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रोम धर्म प्रांत के लिए संत पापा के विकर जनरल का पत्र पढ़ा गया। कार्डिनल ने लिखा कि पहले विवाहित जोड़े को धन्य घोषित किया जाएगा। लुईजी और मरिया बेल्ट्राम परिवारों की 10वीं विश्व बैठक के संरक्षक होंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।